सिंधु सभ्यता का उद्भव। पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में सिंधु सभ्यता एक परिपक्व एवं पूर्ण विकसित सभ्यता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। सिंधु सभ्यता के प्रौढ़ चरण से प्रायः सभी पुरावे परिचित हैं, किंतु उसके प्रारंभिक चरण के विषय में जानकारी का अभाव है। सिंधु सभ्यता के प्रकाश में आने के बाद से अनेक प्रश्न पुराविदों को बराबर उद्वेलित करते रहे हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे और वे कहां से आए? यदि इस सभ्यता के निर्माता बाहर से नहीं आए तो स्थानीय परिवेश से विकसित इस सभ्यता के आद्य एवं आरंभिक रूप क्यों नहीं मिलते हैं? सिंधु सभ्यता प्रारंभ से ही प्रौढ़ रूप में दिखलाई देती है, जो असामान्य बात है। सिंधु घाटी की परिधि के बाहर ईरान, इराक, मिस्र तथा क्रीट में विकसित समकालीन सभ्यताओं के समुन्नयन में अनेक स्तर मिलते हैं। इन सभ्यताओं के पहले की संस्कृतियां सुविदित हैं, अतः इनके संदर्भ में यह कह सकते हैं कि किस संस्कृति के बाद कौन सी संस्कृति अस्तित्व में आई। दजला फरात की घाटी में विकसित सुमेरी सभ्यता के प्रारंभिक तथा प्रौढ़ चरणों को बतलाया जा सकता है, लेकिन जब सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक स्तरों की छानबीन का प्रयास किया जाता है तब समस्या पेचीदा हो जाती है। सिंधु सभ्यता के उद्भव के संबंध में मुख्यतः दो मत प्रचलित हैं, एक विदेशी उत्पत्ति का मत, दो स्थानीय उत्पत्ति का मत। विदेशी उत्पत्ति का मत, पुरातत्वविदों के एक वर्ग की यह मान्यता है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख तत्व पश्चिमी एशिया की सुमेरिया सभ्यता से लिए गए हैं। जॉन मार्शल, वी गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और डी एच गार्डन के नाम इस संदर्भ में लिए जा सकते हैं। इन विद्वानों का यह सुझाव था कि सिंधु घाटी क्षेत्र में विकसित सभ्यता ने दजला फरात की घाटी में विकसित मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ग्रहण की थी। व्हीलर का मत है कि विचार बहुत प्रबल होते हैं और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर उनका आश्चर्यजनक गति से प्रसार होता है और अनुकूल पृष्ठ संख्या 427 परिस्थितियां मिलने पर उनका आश्चर्यजनक गति से प्रसार होता है। कालक्रम की दृष्टि से मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता का विकास सिंधु सभ्यता से पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता के साथ सुमेरी सभ्यता की एकरूपता न होने पर भी दोनों सभ्यताओं में उल्लेखनीय समानताएं हैं। दोनों ही सभ्यताओं में नगर जीवन का विकास कांस्य एवं ताम्र उपकरणों के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों, उपयोग चाक निर्मित मृदभांड, इमारतों के निर्माण में कच्ची एवं पक्की ईंटों का प्रयोग, लेखन कला का प्रयोग मिलता है। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता में आधारभूत अंतर है। सिंधु सभ्यता के नगर योजना अनुसार बसाए गए प्रतीत होते हैं, जिनमें सीधी सड़कों और स्वच्छता तथा सफाई का समुचित प्रबंध था। सुमेरी नगर गांव से विकसित हुए थे, इसलिए उनमें टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिलती हैं। धातु के उपकरणों, मृदभांडों, मृदमूर्तियों, मूर्तियों और मोहरों के आकार प्रकार में उल्लेखनीय विभिन्नताएं हैं। दोनों की लिपियों में स्वरूपगत अंतर है। सिंधु लिपि में अहमद हसन दानी के अनुसार लगभग 537 चिन्ह हैं, जबकि सुमेरीय किलाक्षर लिपि में लगभग 900 चिन्ह हैं। ऐसी स्थिति में सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता के उपनिवेशन का परिणाम नहीं माना जा सकता है, अस्तु सुमेरियन सिंधु सभ्यता के जनक नहीं माने जा सकते। स्थानीय उत्पत्ति का मत, स्टुअर्ट पिगट, अल्विन दंपत्ति एवं डब्ल्यू एच फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ दिल्स, रफीक मुगल आदि का विचार है कि सिंधु सभ्यता के विशिष्ट तत्व अपनी मौलिकता का परिचय देते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता किसी विदेशी सभ्यता से अनुप्राणित न होकर स्थानीय संस्कृतियों से विकसित हुई थी। दक्षिणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब तथा भारत के उत्तरी राजस्थान एवं हरियाणा के क्षेत्रों में सिंधु सभ्यता का मूल उत्स खोजा जा सकता है। मेसोपोटामिया सभ्यता की जो पुरानिधियाँ सेंदो पुरास्थलों पर और सेंदो सभ्यता के पुरावशेष पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं, वे मात्र पारस्परिक सांस्कृतिक संपर्क एवं व्यापारिक संबंध के द्योतक हैं। दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित मुंडीकाक देह मोरासी गुंडई और सिस्तान में सहरे सोक्ता, उत्तरी बलूचिस्तान में जॉब केटा, दक्षिणी बलूचिस्तान में कुल्ली नाल, सिंध में अमारी कोटदीजी, पंजाब में हड़प्पा प्राक सैंधव संस्कृति और उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा प्राक सैंधव संस्कृति, हरियाणा में राखी गढ़ी तथा बनावली आदि से ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियों संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इन ग्राम्य संस्कृतियों के लोग कृषि एवं पशुपालन से परिचित थे। ग्राम्य संस्कृतियों की मृदभांड कला पर्याप्त विकसित एवं विशिष्ट थी। बहुरंगी अलंकरण से युक्त मृदभांड बलूचिस्तान के उच्च क्षेत्रों में और द्विरंगी अलंकरणों से युक्त मिट्टी के बर्तन गिरिपादों एवं मैदानी क्षेत्रों में प्रचलित थे। इस द्विरंगी मृदभांड परंपरा को सैंधव पात्र परंपरा की पृष्ठ संख्या 428 जन्मदात्री माना जा सकता है। सैंधव सभ्यता के मृदभांडों पर प्राच्य कतिपय अलंकरण अभिप्राय जैसे पीपल की पत्ती, कुल्ली, मत्स्य शल्क, कोट दीजी, सूक्ष्म रेखाओं से घिरी त्रिभुज, हिरण आदि अलंकरण इन ग्राम्य संस्कृतियों के लोग, विशेषकर बलूचिस्तान के लोग, मिट्टी की पशु एवं नारी मातृदेवी मूर्तियों के अतिरिक्त तांबे एवं कांसे की चीजें बनाने में भी अभ्यस्त थे। संभवतः मातृदेवी एवं लिंग की पूजा करते थे। मृतकों का समाधिकरण एवं दाह संस्कार करते थे। पत्थर एवं कच्ची ईंटों के मकान बनाते थे। कोटदीजी और कालीबंगा की प्राक सैंधव बस्तियां कच्ची ईंटों की रक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी। रक्षा प्राचीर के निर्माण को प्रायः कालीबंगा के प्राक सैंधव रक्षा प्राचीर के निर्माण को प्रायः नगरीकरण की ओर अग्रसर होने का सूचक माना जाता है। आमरी, कोटदीजी और कालीबंगा के प्राक सैंधव स्तरों से जिस संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं वह कुछ परिवर्तनों के साथ सैंधव सभ्यता के काल में ही चलती रही। कालीबंगा के कतिपय मकानों में प्राक सैंधव संस्कृति एवं सैंधव सभ्यता के सांस्कृतिक पुरावशेष साथ साथ मिले हैं। सैंधव सभ्यता के उद्भव पर अमेरिका के पुरातत्वविदों जॉर्ज एफ डिल्स एवं वॉल्टर ए फेयर सर्विस ने कुछ महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। डिल्स का विचार है कि यद्यपि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में स्थित ग्राम्य संस्कृतियों में परस्पर संपर्क के साक्ष्य मिलते हैं, तथापि मूलतः ये विभिन्न स्थानीय परंपराओं की उपस्थिति संभवतः बहुरंगी एवं द्विरंगी अलंकरण अभिप्रायों वाली मृदभांड परंपरा और ककूत मानसांड की मृदमूर्तियों का प्रचलन पश्चिम की ओर ईरान अफगानिस्तान से हुआ। फेयर सर्विस का मत है कि सैंधव सभ्यता एक विशुद्ध नगरी सभ्यता है। इस क्षेत्र में नगरी जीवन की आवश्यकता मुख्यतः दो कारणों से हुई। एक, इस क्षेत्र की ग्रामीण संस्कृतियां अपने परिवेश से अधिकतम लाभ उठाने की स्थिति में नहीं थी। दो, वे इस स्थिति में थी जहां से नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती थी। दक्षिणी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों की ग्रामीण संस्कृतियों का संपर्क पश्चिमी एशिया की ग्रामीण संस्कृतियों से रहा होगा। इन दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ होगा। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई होगी जब इन ग्रामीण संस्कृतियों ने नगरी जीवन में प्रवेश करने हेतु आवश्यक उपादान जुटा लिए होंगे। इन ग्रामीण संस्कृतियों के संपर्क के फलस्वरूप नगर निवेश की जानकारी भी प्राप्त हुई। फलतः इन्होंने स्वयं नगर जीवन की शुरुआत किया। नियति ने जिनके कंधों पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व रख छोड़ा था वे मात्र नकलची नहीं थे। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि सिंधु घाटी दजला फरात की घाटी नहीं है, अतः यदि इस क्षेत्र में नगरीय जीवन का सूत्रपात होता होगा तो उसका अपना स्वतंत्र स्वरूप होगा। इसलिए नगरीय जीवन के तत्व तो हो सकता है कि उधार लिए गए हों, किंतु मौलिक प्रतिभा के आधार पर देश एवं काल के अनुसार उन्हें कार्य रूप में परिणत किया गया होगा। इस प्रकार सिंधु घाटी में जो नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ वह दजला फरात घाटी की सभ्यता की अनुकृति मात्र नहीं था। निर्माण पृष्ठ संख्या 429। कार्य में कच्ची ईंटों के स्थान पर पक्की पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा, किंतु उनका आकार मेसोपोटामिया की ईंटों के समान नहीं था। सैंधव लिपि के अक्षरों के स्वरूप मेसोपोटामिया की लिपि के अक्षरों से भिन्न थे। मृदभांडों पर प्राप्त चित्रण अभिप्राय सिंधु घाटी की धरती की उपज थे, क्योंकि सैंधव सभ्यता के पात्रों पर जिन पेड़ पौधों तथा जानवरों का अंकन है उन्हें समझने के लिए सिंधु घाटी एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों से बाहर मेसोपोटामिया इराक की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। सैंधव मुहरों पर जिन पशुओं का अंकन है वे सब इसी भूभाग पर विचरण करने वाले पशु थे। यद्यपि उपर्युक्त ग्राम्य संस्कृतियों में पकी ईंटों का प्रयोग, लेखन कला और मुहरों का प्रचलन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तथापि फिलहाल सिंधु सभ्यता का उद्भव इन्हीं में खोजा जाना चाहिए। इस समय जो अनेक अन्य प्रश्न अनुत्तरित हैं उनका समाधान संभवतः भविष्य में होने वाली पुरातात्विक अनुसंधानों से ही से हो सकेगा। विघटन एवं विनाश। सैंधव सभ्यता के विघटन का प्रश्न भी उद्भव की भांति एक जटिल समस्या है। यह पुरातत्व वेत्ताओं के लिए चुनौती है। इसका अभी तक संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका है। विद्वानों ने इस विषय पर विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। सैंधव सभ्यता के विघटन के लिए एक नहीं बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी रहे होंगे। इन कारणों को अधोलिखित प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक, प्रशासनिक शिथिलता। दो, जलवायु परिवर्तन। तीन, बाढ़। चार, विदेशी व्यापार में गतिरोध। भूतात्विक परिवर्तन। छह, बाह्य आक्रमण। सात, महामारी। प्रशासनिक शिथिलता। जॉन मार्शल और उनके सहयोगियों को मोहनजोदड़ो के उत्खनन के दौरान इस पुरास्थल के ऊपरी स्तरों से कतिपय ऐसे साक्ष्य मिले थे जिनके आधार पर यह प्रस्तावित किया गया कि इस सभ्यता के ऊपरी चरण में विघटन के तत्व विद्यमान थे। नगर प्रशासन में शिथिलता आ गई थी। नागरिक स्तर गिरता जा रहा था। परवर्ती चरण में मकान बनाते समय सड़कों एवं गलियों का अतिक्रमण होने लगा था। नए मकानों के निर्माण में पुराने मकानों की ईंटों का प्रयोग होने लगा था। दीवारें कम चौड़ी बनने लगी थी। मोहनजोदड़ो में कुम्हारों ने भी सड़क पर 6 आवे बना लिए थे। मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा इत्यादि नगरों के अंतिम चरण में नागरिक जीवन में ह्रास परिलक्षित होता था। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में लोथल और रंगपुर आदि पुरास्थलों पर प्रौढ़ सैंधव सभ्यता पतनोन्मुख होकर साधारण ढंग की स्थानीय संस्कृति में परिवर्तित हो गई थी। चमकदार लाल रंग के मृदभांडों का आधिक्य हो गया था। पकी ईंटों के स्थान पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होने लगा था। बस्ती का आकार सीमित हो गया था और स्वच्छता की व्यवस्था समाप्त हो गई थी। पृष्ठ संख्या 430। जलवायु परिवर्तन। सैंधव सभ्यता के अंत के लिए जलवायु परिवर्तन को उत्तरदायी माना जा सकता है। सर्वप्रथम आरएल स्टाइन ने काशकोई, झालावान, सारावान आदि बालूचिस्तान में स्थित स्थानों पर प्रचुर संख्या में पाए गए बांधों गबरबंद के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि वर्तमान काल की तुलना में आद्य ऐतिहासिक काल में बलूचिस्तान में अधिक पानी बरसता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन के बाद जॉन मार्शल और उनके सहयोगियों के अनुसार इस समस्या पर कुछ नया प्रकाश पड़ा। इन दोनों नगरों में इमारतों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर पकी ईंटों का प्रयोग हुआ था, जिन्हें पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता पड़ी होगी। सिंध और पंजाब के क्षेत्र में घने जंगल रहे होंगे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में पानी की निकासी के लिए चौड़ी चौड़ी पक्की नालियों के अस्तित्व की व्याख्या यही मान की जा सकती है कि पहले अधिक वर्षा होती थी। अनुमान लगाया गया है कि सिंध में 120 से 150 सेमी वार्षिक वर्षा होती थी, जबकि आजकल केवल 75 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। पश्चिमोत्तर भारत में अरब सागर की ओर से आने वाले मानसून में यदि कुछ अक्षांशों का अंतर हो जाता तो पंजाब एवं सिंध की जलवायु में अंतर हो सकता है। मोहनजोदड़ो की मोहरों पर गैंडा, हाथी और व्याघ्र का अंकन भी इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत सघन वनों एवं आर्द्र जलवायु की परिचायक है। राजस्थान की झीलों के तल से इकट्ठा किए गए पुष्प पराग के विश्लेषण के आधार पर गुरदीप सिंह ने यह निष्कर्ष निकाला कि 3000 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में राजस्थान की जलवायु अधिक आर्द्र थी। प्रकारांतर से यह कहा जा सकता है कि सिंध और पंजाब की भी यही स्थिति रही होगी। सिंधु सभ्यता के समय पंजाब, सिंध और राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक पानी बरसता था। धीरे धीरे ईंटें पकाने, मकान बनाने आदि के लिए जंगल कटते गए। जमीन के ऊपर से घास का आच्छादन घटता गया। वनों के न रहने से वर्षा की मात्रा में कमी तथा घास के अभाव में बड़े पैमाने पर भूमि क्षरण के फलस्वरूप कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ होगा। अमला नंद घोष ने राजस्थान में सरस्वती और दृशतवती नदियों की सूखी घाटियों का अन्वेषण करके यह निष्कर्ष निकाला था कि सैंधव काल में इन नदियों में हमेशा पानी रहता था। घोष और सैंधव सभ्यता से संबंधित पुरास्थल नदियों के तट पर स्थित मिले थे, जबकि बाद की चित्रित धूसर पात्र परंपरा से संबंधित पुरास्थल नदी के तल पर विद्यमान मिले थे। पाकिस्तान में हकरा घग्गर की घाटी के पुरातात्विक अन्वेषण से रफीक मुगल को भी ऐसी ही साक्ष्य चोलिस्तान, भूतपूर्व बहावलपुर रियासत से मिले हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित 72 पुरास्थल हकरा नदी के तट पर अवस्थित थे, जबकि चित्रित धूसर पात्र परंपरा से संबंधित 10 पुरास्थल नदी के तल पर स्थित मिले हैं। यह तभी संभव हुआ होगा जब सरस्वती पृष्ठ संख्या 431 नदी सूख गई होगी। जलवायु परिवर्तन से ही नदी सूखी होगी और कालीबंगा सहित राजस्थान की सैंधव सभ्यता से संबद्ध अन्य बस्तियों का विनाश हुआ होगा। जलवायु परंपरा के इस मत से जो विद्यमान सहमत नहीं है उनमें आर एल राइक्स, आर एस डायसन और वॉल्टर फेयर सर्विस के नाम उल्लेखनीय है। इन विद्वानों के अनुसार विगत 4000 वर्षों में सिंधु घाटी की जलवायु में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। सैंधव प्रदेश के क्षेत्र में बबूल, झाऊ आदि आज भी मिलने वाली जंगली लकड़ियां ईंटें पकाने के लिए पर्याप्त रही होंगी, क्योंकि इनका आज भी ईंटें पकाने के लिए उपयोग होता है। पक्की ईंटों का प्रयोग जलवायु से जुड़ा न होकर फैशन की निशानी थी। पक्की नालियां नगरों के गंदे जल के निकास के लिए बनाई गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मुहरों पर गैंडे तथा हाथी का अंकन यह नहीं सिद्ध करता है कि उस समय के सिंध एवं पंजाब के जंगलों में ये विचरण कर रहे थे। बहुत संभव है कि उन लोगों ने इन जानवरों को हिमालय के तराई क्षेत्र में कहीं देखा रहा होगा। इनके विशिष्ट आकार प्रकार से आकृष्ट होकर इन जानवरों का अंकन प्रारंभ कर दिया गया हो। कुछ हाथी पालतू भी बनाए गए हों तो असंभव नहीं है। बाघ तो 19वीं शताब्दी ईस्वी तक सिंध क्षेत्र में मौजूद रहा है। ऐसी स्थिति में सैंधव सभ्यता के काल में वह निश्चित ही विद्यमान रहा होगा। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के तथ्य को प्रायः अनेक विद्वान सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण नहीं स्वीकार करते हैं। बाढ़ अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई सैंधव सभ्यता के विघटन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कारण एवं परिणाम बतलाए गए हैं। सन 1931 में जॉन मार्शल और सन 1938 में अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो के पतन का प्रमुख कारण सिंधु नदी की आवर्ती बाढ़ तथा बाढ़ की विभीषिका को बतलाया था। मार्शल के निर्देशन में किए गए मोहनजोदड़ो के उत्खनन से यहाँ के विभिन्न स्तरों से बालू की परतें प्राप्त हुई थी, जो बाढ़ के प्रकोप का प्रमाण थी। मोहनजोदड़ो में नगर के पुनर्निर्माण के दौरे में भवनों को ऊंचे धरातल पर बनाया जा रहा था। इन बाढ़ों में पूरा नगर चाहे न डूबा हो तथापि नगर के एक बहुत बड़े भाग का जलमग्न होना अवश्यंभावी था। कुछ साधन संपन्न लोग बाढ़ के फलस्वरूप मोहनजोदड़ो को छोड़कर अन्यत्र चले गए होंगे। मैके के अनुसार चानूदड़ो के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से भी यह प्रकट होता है कि बाढ़ ने इस नगर के निवासियों को भी नगर छोड़ने के लिए बाध्य किया था। चानूदड़ो के अंतिम चरण में भयंकर बाढ़ के प्रमाण रेत की परत से स्पष्ट है। चानूदड़ो के एक टीले के विषय में मैके का मत है कि वहां पर सिंधु सभ्यता के लोग कुछ समय तक किसी तरह से बने रहे और बाद में धीरे धीरे नष्ट हो गए अथवा अन्यत्र चले गए। मैके के अनुसार सिंधु नदी में बाढ़ विशाल पैमाने पर अनेक बार काफी समय तक रही, जिसके फलस्वरूप चानूदड़ो के लोग बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे क्षेत्रों की ओर चले गए। और इस पृष्ठ संख्या 432 प्रकार उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता समाप्त हो गई। चानूदड़ो के स्पष्टीकरण के साक्ष्य से भी विदित होता है कि कालांतर में जब यहाँ झुकर संस्कृति के लोग आए तब यह पुरास्थल वीरान हो चुका था। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित पुरास्थलों के उत्खनन से भी बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। एसआर राव को लोथल और भगत राव में दो भयंकर बाढ़ों के संबंध में प्रमाण मिले हैं। लोथल में पहली बाढ़ लगभग 2000 ईसा पूर्व में और दूसरी 1900 ईसा पूर्व में आई थी। राव का अनुमान है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी प्रायः इसी समय भीषण बाढ़ आई होगी। राव के अनुसार बाढ़ से बचाव के लिए लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि नगरों के चारों ओर बांध बनाए गए थे। भीषण बाढ़ों से खेती विनष्ट होने, शहरों के बालू से भर जाने के कारण बहुत से लोग सिंधु घाटी को छोड़कर सतलज और सरस्वती की घाटियों की ओर चले गए थे होंगे। सतलज की घाटी में रोपड़ और सरस्वती के उपत्यका में कालीबंगा की सैंधव बस्तियां संभवतः इन्हीं बाढ़ पीड़ितों ने बसाई होगी थी। इस पलायन के कारण मोहनजोदड़ो तथा लोथल के क्षेत्र उत्तरोत्तर संकुचित होते गए और वहां पर प्रायः सभी क्षेत्रों में ह्रास के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। इस मत के मानने में भी अनेक कठिनाइयां हैं। यदि यह मान भी लिया जाए कि मोहनजोदड़ो, चानूदड़ो और लोथल बाढ़ से विनष्ट हो गए, तो भी इस सभ्यता के अन्य अनेक पुरास्थलों के विषय में यह कारण लागू नहीं होता है। वे स्थल क्यों नष्ट हो गए जो सिंधु आदि बड़ी नदियों के किनारे पर नहीं बसे थे? बाढ़ को किसी एक या दो नगरों के इतिहास को समाप्त करने में सक्षम माना जा सकता है, लेकिन इसने एक सभ्यता को खत्म कर दिया, यह बात आसानी से समझ में नहीं आती। इसलिए बाढ़ के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण की खोज करनी होगी जिन्होंने सिंधु सभ्यता का नाम मिटा दिया। विदेशी व्यापार में गतिरोध। सिंधु सभ्यता के विनाश का एक अन्य कारण विदेशी व्यापार में कमी को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों, विशेषकर मेसोपोटामिया की सुमेरी सभ्यता के साथ था, जो इसके वैचारिक आदान प्रदान तथा समृद्धि का मुख्य कारण था। सिंधु सभ्यता के लगभग 200 से अधिक ज्ञात पुरास्थलों में से केवल कतिपय ही ऐसे हैं जिन्हें नगर की संख्या दी जा सकती है। 5-7 नगरों में से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अपना पृथक अथवा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं। शेष कस्बे एवं गांव थे। सिंधु सभ्यता के अनेक नगर स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों से यह इंगित होता है कि इस सभ्यता के अंतिम चरण में विदेशी व्यापार उत्तरोत्तर क्षीण होता जा रहा है। सिंधु सभ्यता का नगरीय स्वरूप 2000 ईसा पूर्व तक समाप्त प्राय हो चला था। सन 1955 में W.F. अल्ब्राइट ने यह मत व्यक्त किया था कि मेसोपोटामिया के साक्ष्यों के अनुसार सिंधु सभ्यता का अंत लगभग 1750 ईसा पूर्व में माना जा सकता है। पृष्ठ संख्या 433। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि 2000 ईसा पूर्व के बाद सिंधु सभ्यता, जो अपने नगरीय जीवन के लिए प्रसिद्ध थी, उसमें ग्रामीण संस्कृति के लक्षण प्रकट होने लगे थे। यह इस सभ्यता के जीवन स्तर में गिरावट का प्रतीक है। फेयर सर्विस ने लिखा है कि नगरीय समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए संतुलन आवश्यक है, किंतु सभ्यता की जटिलता तथा बाह्य परिस्थितियों के कारण यह संतुलन बिगड़ जाता है और ह्रास एवं विघटन के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। मार्टिमर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में ह्रास के लक्षणों का बड़ा स्पष्ट चित्रण किया था। जैसे इस काल के भवनों की परियोजना, आकार प्रकार, दीवारों के निर्माण आदि में ह्रास के चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के टीलों पर अतिरिक्त आबादी के लिए जगह नहीं रह गई थी। पुराने बड़े कामों का छोटे छोटे कमरों में विभाजन शुरू हो गया था और नए मकानों के निर्माण के लिए पुरानी ईंटें लगने लगी थी। पुराने खंडहरों में भी भवन बनने लगे थे। इनसे यह इंगित होता है कि चंदो सभ्यता का आर्थिक ढांचा लड़खड़ाने लगा था। भूतात्विक परिवर्तन। एम आर साहनी, आर एल राइक्स, जार ए दिल्स और एस डी लैम्ब्रिक आदि ने सैंदो सभ्यता के विघटन के लिए भूतात्विक परिवर्तनों को उत्तरदायी बतलाया है। सर्वप्रथम प्रसिद्ध भूतत्ववेत्ता एम आर साहनी ने बाढ़ की अपेक्षा विस्तृत जल प्लावन को सैंदो सभ्यता के विनाश का कारण बतलाया था। पहले इस मत को बहुत मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन इधर अंतर्भौमिक जल विशेषज्ञ अमेरिकन आर एल रैक्स के विवर्तनिक उथल पुथल टेक्टोनिक मूवमेंट के मत के परिप्रेक्ष्य में अनेक विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। राइक्स और डेल्स ने सन 1964-65 में मोहनजोदड़ो की प्राचीन बाढ़ों के अध्ययन के लिए इसके तीन विभिन्न क्षेत्रों में वर्मे से वेधन बोरिंग्स करके बाढ़ से संबंधित स्तरों का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य पुरास्थलों पर इसी उद्देश्य से परीक्षणात्मक अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य पुरास्थलों पर इसी उद्देश्य से परिणात्मक अध्ययन किए गए। अपने इस अध्ययन के आधार पर राइक्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि विवर्तनिक उथल पुथल के कारण अरब सागर के उत्तरी छोर के आसपास की जमीन में उभार आ गया था। जमीन में उभार आ जाने के कारण नदियों के अरब सागर तक पहुंचने में रुकावट होने लगी। नदियों के मुहानों पर रेत जमा हो गई, जगह जगह झीलें बन गई। सिंधु की घाटी में 48 किमी से लेकर 240 किमी लंबी एक झील अस्तित्व में आई, जिसके फलस्वरूप कीचड़ और दलदल बढ़ता गया। जमीन के उतार चढ़ाव, दलदल एवं कीचड़ के कारण यातायात में कठिनाई बढ़ी तथा धीरे धीरे सैंधो नगरों का अंतरदेशीय और विदेशी व्यापार घटने लगा। जल प्लावन से लोगों का मनोबल क्षीण हो गया। धीरे बहुत से लोग अपने आवास छोड़कर चले गए। लोगों के रहन सहन में गिरावट आई, कृषि उपज में कमी हुई और इस प्रकार सभ्यता का विघटन प्रारंभ हो गया। पृष्ठ संख्या 434। राइक्स का यह मत सर्वमान्य नहीं है। एस टी लैम्ब्रिक और ग्रेगरी पोशल ने इस तरह की झील के निर्माण के विषय में कतिपय तकनीकी शंकाएं उठाई हैं। लैम्ब्रिक के अनुसार सिंधु की प्रवाह प्रकृति और राइक्स के अनुमान एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। पोशल की प्रमुख आपत्ति यह है कि 240 किमी लंबी झील के बांध के अवशेष एक क्षेत्र में कहीं नहीं मिलते हैं। भारतीय गणराज्य के जिन क्षेत्रों को राइक्स ने समुद्र में डूबे हुए बतलाया है, वे संभवतः समुद्र के ऊपर थे, क्योंकि कच्छ के क्षेत्र में सैंदो सभ्यता से संबंधित सुरकोटदा एवं धोलावीरा आदि कई पुरास्थल खोज निकाले गए हैं। यदि यह मान भी लिया जाए कि मोहनजोदड़ो के पास एक विशाल झील बन गई थी, तब भी यह बात समझ में नहीं आती है कि जिन लोगों ने सिंधु नदी की भीषण बाढ़ों का बहादुरी के साथ सामना किया था, क्या उनका मनोबल इतना टूट गया था कि एक झील को देखकर वे भाग खड़े हुए थे। भूतात्विक परिवर्तन के मत को किंचित संशोधित करके इधर हाल ही में कुछ विद्वानों ने नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन और उससे उत्पन्न जलवायुगत परिणामों को सैंदो सभ्यता के विनाश का कारण बतलाया है। एस टी लैम्बिक ने नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन के इस मत का प्रतिपादन किया है। भूकंप अथवा किन्हीं अन्य विवर्तनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप नदियों के प्रवाह मार्ग में ये परिवर्तन हुए होंगे। मोहनजोदड़ो से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी के प्रवाह पथ में विनाशकारी एवं घातक परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप लोग अपने आवासों को छोड़कर अन्यत्र चले गए। फलतः जब इन नगरों में विदेशियों के आक्रमण हुए, तब लोग उनका सामना नहीं कर सके। ऐतिहासिक काल में भी सिंधु नदी ने अनेक बार मार्ग परिवर्तन किए हैं। माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के विनाश का मुख्य कारण रावी नदी के मार्ग परिवर्तन को माना है। सैंधव सभ्यता के काल में रावी हड़प्पा के बिल्कुल नजदीक से बहती थी, परंतु अब वहां से लगभग 9.60 किमी की दूरी पर है। कालीबंगा में सैंधव सभ्यता के ऊपर किसी अन्य सभ्यता के पुरावशेषों के प्रमाण नहीं मिले हैं। जी एफ डेल्स ने कालीबंगा का सन 1968 में सर्वेक्षण करके प्रतिपादित किया कि घग्गर और उनकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन की वहां की संस्कृति के विनाश का मुख्य कारण बने। रेडियो कार्बन तिथि क्रम के अनुसार कालीबंगा का अंत 1750 ईसा पूर्व के आसपास हुआ और यही तिथि इस क्षेत्र में सरस्वती तथा दृश्यवती के मार्ग परिवर्तन की मानी जा सकती है। नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन के निम्नलिखित अधोलिखित परिणाम हुए। एक, पीने और कृषि कार्य के लिए जल का अभाव हो गया। दो, नदियों के द्वारा होने वाला यातायात एवं व्यापार कम हो गया। तीन, बहुत से क्षेत्र निर्जन हो गए और फलतः उजड़ गए। हटाओगी? पृष्ठ संख्या 435, बाह्य आक्रमण। सैंधव सभ्यता के विघटन में बाह्य आक्रमण को भी एक कारण माना जाता है। सैंधव सभ्यता को प्रायः आर्यतर सभ्यता माना जाता है, इसलिए इसके विनाश के लिए आर्य भाषा भाषी लोगों के आक्रमण की ओर विद्वानों का ध्यान पुरातत्व के प्रसिद्ध पुरोधा वी गार्डन चाइल्ड ने सर्वप्रथम सन 1934 में आकृष्ट किया था। अर्नेस्ट मैके, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट एवं डी एच गार्डन आदि ने भी इस मत का समर्थन किया है। रेखाचित्र 33, हड़प्पा समाधि एच के मृदभांड। पृष्ठ संख्या 436, हड़प्पा के टीले पर सैंधव सभ्यता के पुरावशेषों के अतिरिक्त एक अन्य विजातीय संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। कालांतर में इसी विजातीय संस्कृति से संबंधित एक कब्रिस्तान सन 1934 में प्रकाश में आया, जिसे माधव स्वरूप वत्स ने समाधि एच नाम दिया। मृतकों को दफनाने की विधा के आधार पर इस कब्रिस्तान के दो स्तर स्वीकार किए गए हैं। निचले धरातल से जो कब्रें मिली उनमें मुर्दों को सांगो पांग पूर्व पश्चिम अथवा उत्तर पूर्व से दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में चित्त लिटाया गया था। दो कब्रों को छोड़कर सभी के साथ चमकीले रंग के लेप वाले लाल मृदभांड मिले हैं, जिनमें काले रंग में बैल, गाय, बकरी, मोर, मछली, तारागण, सीधी तथा त्रिभुजाकार रेखाओं की वृत्त के अंदर मानव कृति आदि का चित्रण किया गया है। समाधि एच के प्रमुख पात्र प्रकारों में प्याले, आधार रहित तस्तरियां, चिपटे ढक्कन और बड़े बड़े घड़े अथवा मटके प्रमुख हैं। रेखाचित्र 34, हड़प्पा समाधि एच के मृत भांडों पर प्राप्त चित्रण। पृष्ठ संख्या 437, समाधि एच के दूसरे स्तर से अंत्येष्टि कलशों में आंशिक शवाधान से संबंधित लगभग 140 समाधियां मिली हैं, जिनमें से लगभग एक दर्जन कंकाल बच्चों के हैं जो मुड़ी हुई अवस्था में पूर्ण शवाधान है। कालक्रम का किंचित व्यतिक्रम होते हुए भी दोनों शवाधानों को एक ही संस्कृति का अंग माना गया है। इन शवाधानों से प्राप्त मृदभांड आकार प्रकार एवं चित्रण अभिप्रायों की दृष्टि से सैंधव सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों से मेल नहीं खाते हैं। गार्डन चाइल्ड की यह मान्यता थी कि इन समाधियों के निर्माता उन आर्य कबीलों से संबंधित थे जिन्होंने सैंधव सभ्यता का विनाश किया था। सन 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने गार्डन चाइल्ड के इस निष्कर्ष के समर्थन के लिए कतिपय अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। व्हीलर के अनुसार यद्यपि द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक सैंधव सभ्यता विद्यमान थी, तथापि अपने उत्तर काल में यह क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का सहसा एवं आकस्मिक अंत किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम था। द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी एशिया में विभिन्न प्रजातियों का बड़े पैमाने पर इधर उधर संचरण हुआ। यह वही समय था जब हिक्सॉस मिस्र की धरती पर पहुंचे और मेसोपोटामिया में केसाइटो का आगमन हुआ। बलूचिस्तान में द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में राना गुंडई, नाल, चौब और डाबर कोट की बस्तियों के जल ने नवीन प्रकार के ताम्र उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं, जो नए लोगों के इस क्षेत्र में आने के सूचक हैं। बलूचिस्तान की बस्तियों की जत्थों को उत्तरदायी माना गया है। मोहनजोदड़ो के ऊपरी धरातल से अस्त व्यस्त दशा में प्राप्त मानव कंकालों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सिंधु सभ्यता के अंतिम दौरे में बाह्य आक्रमण हुआ था। अधिकांश कंकाल अस्त व्यस्त दशा में विधिवत अंतिम संस्कार किए बिना घरों तथा सार्वजनिक मार्गों पर पड़े हुए मिले थे। इन साक्ष्यों के आधार पर व्हीलर ने यह निष्कर्ष निकाला था कि मोहनजोदड़ो नगर पर सहसा आक्रमण हो गया था और ये लोग भाग नहीं सके थे। व्हीलर ने ऋग्वेद के अंतः साक्ष्यों का इस संदर्भ में अत्यंत बुद्धिमत्ता से उपयोग किया था। ऋग्वेद की कतिपय ऋचाओं में असुरों के अयस निर्मित पुरों के पुरंदर इंद्र द्वारा विनष्ट किए जाने का उल्लेख मिलता है। सिंधु सभ्यता के अतिरिक्त ऋग्वेद की समकालिक किसी अन्य भारतीय सभ्यता के नगर और किले हमें ज्ञात नहीं है। अतः व्हीलर ने इस नरसंहार के लिए इंद्र को दोषी ठहराया था। इन समस्त साक्ष्यों से यह इंगित होता है कि सिंधु सभ्यता का विघटन आर्य आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि अनेक पुरातत्वविद उपर्युक्त मत से सहमत नहीं हैं। इनके अनुसार सिंधु सभ्यता समृद्धि की और विघटन के समय में अंतराल है। पृष्ठ संख्या 438। कुछ विद्वानों के अनुसार आर्य भाषा भाषी लोगों के आगमन से पहले ही सिंधु सभ्यता समाप्त तो हो चुकी थी, अतः उसे आर्यों का कार्य कैसे कह सकते हैं। चानुदड़ों के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के बाद किसी बस्ती के अवशेष नहीं मिले थे। इसी प्रकार रोपड़, आलमगीरपुर तथा प्राचीन सरस्वती की घाटी से उपलब्ध साक्ष्यों से विदित होता है कि सिंधु सभ्यता के काफी समय बाद यहाँ पर पुनः बस्तियां अस्तित्व में आईं। अमेरिकन प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉर्ज एफ डिल्स ने सर्वप्रथम व्हीलर के बाह्य आक्रमण की मान्यता के सामने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बतलाया कि मोहनजोदड़ो के जिन मानव कंकालों का व्हीलर ने उल्लेख किया था वे सिंधु सभ्यता के पर्वती चरण से तो संबंधित है, लेकिन अंतिम चरण से कदापि नहीं। इसके अतिरिक्त ये मानव कंकाल एक ही नहीं बल्कि अनेक स्तरों से संबंधित है। महामारी। कुछ विद्वानों का विचार है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी का सिंधु सभ्यता की जनसंख्या शिकार हुई। हड़प्पा, चानुदड़ो, लोतल, कालीबंगा तथा रोपण आदि में नगर क्षेत्र के बाहर स्थित कब्रगाहों से कंकाल मिले हैं। मोहनजोदड़ो से अभी तक प्राप्त 42 मानव कंकाल नगर क्षेत्र के अंदर स्थित भवनों तथा सार्वजनिक मार्गों में अस्त व्यस्त दशा में बिना विधिवत अंतिम संस्कार किए पड़े हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो नगर के विभिन्न भागों में स्त्री पुरुषों एवं बच्चों के कंकालों के बिखरे हुए मिलने के कारण बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप नरसंहार के मत को विशेष बल मिला था। मोहनजोदड़ो में यदि समाधिक क्षेत्र नगर के बाहर रहा होगा तो उसकी खोज होना अभी शेष है। अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय के KUR केनेडी ने 1967 एवं 1980 में भारतीय नृतत्व सर्वेक्षण कलकत्ता में सुरक्षित 37 कंकालों का और 1977 में पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग कराची में सुरक्षित 5 कंकालों का नृतात्विक दृष्टि से विधिवत अध्ययन किया है। इनमें से केवल एक मानव की मृत्यु चोट लगने से हुई प्रतीत होती है, शेष की मलेरिया जैसी किसी महामारी से आकस्मिक मृत्यु हुई होगी। यदि किसी आक्रमण के फलस्वरूप इन लोगों की मृत्यु हुई होती तो धारदार किसी अस्त्र शस्त्र से चोट के निशान मिलते। केनेडी को ऐसा कोई साक्ष्य अपने अध्ययन के दौरान नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में बाहरी आक्रमण के फलस्वरूप मोहनजोदड़ो के लोगों की आकस्मिक मृत्यु की बात सही नहीं प्रतीत होती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बाहरी आक्रमण के मत की पुष्टि नहीं होती है। उपर्युक्त विभिन्न मतों की समीक्षा से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता के उद्भव की समस्या जितनी जटिल है उतना ही उसके विघटन का प्रश्न भी उलझा हुआ है। पश्चिमी बलूचिस्तान के सुतकागेन डोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक और उत्तर में सरायखोला से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित भगतराव तक इतने विस्तृत तथा भौगोलिक विविधता वाले क्षेत्रों में फैली हुई यह सभ्यता अभिनव पृष्ठ संख्या 439 पुरातात्विक शोधों के अनुसार लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई और दीर्घ जीवित सभ्यता का सभी क्षेत्रों में किसी एक ही कारण से अंत हुआ होगा यह समझना नितांत अनुपयुक्त है। यही नहीं, किसी एक ही नगर में इसके अंत के अनेक कारण रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सभ्यता का विघटन एवं विनाश एक लंबी एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया थी। इस सभ्यता के समग्र रूप से विनाश का कोई एक कारण नहीं था, अपितु विभिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग कारण थे। इनमें प्रशासनिक गड़बड़ी, जलवायु में परिवर्तन, विवर्तनिक कारण एवं नदियों के प्रवाह मार्ग का परिवर्तन, बाढ़ एवं जल प्लावन, व्यापार वाणिज्य संबंधी आर्थिक क्रियाकलापों में गिरावट आदि प्रमुख कारण थे। सातत्य एवं अतिजीविता। सिंधु सभ्यता की खोज के पूर्व तक अधिकांश विद्वानों की यह मान्यता थी कि भारतीय संस्कृति मूल रूप से आर्य भाषा भाषियों की ऋणी है, परंतु सन 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता के प्रकाश में आने के फलस्वरूप विद्वानों ने अपनी इस मान्यता में उल्लेखनीय संशोधन किए हैं। सिंधु सभ्यता यद्यपि अब अतीत की कहानी बन गई है, तथापि प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि कालांतर में विकसित भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर सिंधु सभ्यता का गंभीर प्रभाव पड़ा है। विद्वानों ने प्रारंभ में सिंधु सभ्यता का योगदान भारतीय संस्कृति के केवल धार्मिक पक्ष पर ही स्वीकार किया था। सिंधु सभ्यता के विविध पक्षों के विषय में उत्तरोत्तर जो शोध कार्य हो रहे हैं उनसे यह इंगित होता है कि सिंधु सभ्यता का भारतीय संस्कृति के भौतिक पक्ष पर भी प्रभाव पड़ा। जहाँ तक कालांतर में विकसित भारतीय संस्कृति के भौतिक पक्ष पर सिंधु सभ्यता के प्रभाव का प्रश्न है, इस संदर्भ में प्रसिद्ध विद्वान गार्डन चाइल्ड के मत का उल्लेख किया जा सकता है। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सिंधु सभ्यता के अनेक भौतिक तत्व परवर्ती काल में स्पष्टतः अनुसंतता देखे जा सकते हैं। आर्थिक संगठन, गृह एवं दुर्ग विन्यास, शिल्प तथा रहन सहन के क्षेत्रों में परंपराएं जीवंत दृष्टिगोचर होती हैं। जौ, गेहूं, धान तथा कपास आदि की कृषि, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं का पालन, हलों, बैलगाड़ियों तथा नावों आदि का चलन, दक्षिण भारत के नवपाषाणिक मृदभांडों के अलंकरण अभिप्राय, ब्राह्मी लिपि तथा आहत सिक्कों के कतिपय चिन्हों आदि पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव देखा जा सकता है। ऐतिहासिक काल के गृह एवं दुर्ग विन्यास पर भी कतिपय विद्वान सिंधु सभ्यता का प्रभाव मानते हैं। नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के चट तथा प्रस्तर के ब्लेड एवं अन्य शिल्प आदि सिंधु सभ्यता से अनुप्राणित प्रतीत होते हैं। सजावट एवं श्रृंगार की परंपरा हमें जिसे हम प्राचीन ऐतिहासिक काल में पाते हैं उस पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव पृष्ठ संख्या 440 परिलक्षित होता है। स्त्रियों के केश विन्यास, बाल की सजावट तथा आभूषणों के प्रति विशेष रुचि आदि पर भी सिंधु सभ्यता का प्रभाव स्वीकार किया जाता है। भारतीय धार्मिक जीवन पर सिंधु सभ्यता का अमित प्रभाव पड़ा। सिंधु धर्म पर का प्रभाव इंगित करने वाली पुरातात्विक सामग्रियों के विश्लेषण से पता चलता है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के बहुत से तत्वों की प्राचीनता सिंधु सभ्यता के काल तक ले जाई जा सकती है। माता देवी की आराधना, पशुपति, योगेश्वर एवं कदाचित नटराज के रूप में शिव की उपासना, लिंग योनि एवं मूर्ति पूजा, पशु पूजा, नाग तथा वृक्षोपासना, जल की पवित्रता, योगाभ्यास आदि परवर्ती भारतीय धार्मिक जीवन के अनेक महत्वपूर्ण तत्व सिंधु सभ्यता से ग्रहण किए गए थे। भौतिक तत्व। सिंधु सभ्यता का लगभग 1500 ईसा पूर्व में विघटन हो जाने के पश्चात लगभग 1000 वर्ष तक भारत में ग्राम्य संस्कृतियों से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त होते हैं। समकालिक एवं परवर्ती नवपाषाणिक तथा ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य कोई विशिष्ट संपर्क सूत्र नहीं मिलता है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की भांति आद्य ऐतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक युग तक सिंधु सभ्यता का एक अविच्छिन्न प्रवाह नहीं मिलता है, बल्कि सिंधु सभ्यता प्राचीन भारत के ऐतिहासिक युग से कटी हुई है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के गांगेय क्षेत्र में द्वितीय नगरी क्रांति के फलस्वरूप नागर सभ्यता का पुनः उदय हुआ। इस लंबे अंतराल के परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक काल के भवनों एवं दुर्गों के विन्यास, ईंटों के आकार, मृदभांडों की निर्माण शैली, उनके आकार प्रकार तथा चित्रण अभिप्राय सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों से भिन्न है। कृषि एवं पशुपालन, मृदभांड, दुर्ग विन्यास, ब्राह्मी लिपि और आहत सिक्कों के संदर्भ में उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा का प्रयास किया जा रहा है। कृषि एवं पशुपालन यद्यपि नगरी जीवन सिंधु सभ्यता के स्वरूप की एक प्रमुख विशेषता थी, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि एवं पशुपालन का इस सभ्यता के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। जौ एवं गेहूं सिंधु सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न थे। इनके अतिरिक्त मटर, कपास, सरसों आदि की भी खेती की जाती थी। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित लोथल से धान तथा बाजरे की खेती के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। जौ, गेहूं, धान तथा कपास आदि की खेती सिंधु सभ्यता के अवसान होने के बाद भी प्रचलित रही। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बड़ावली नामक पुरास्थल के सैंधव सभ्यता के स्तर के उत्खनन से मिट्टी का बना हुआ हल का एक खिलौना मिला है। हल का जो स्वरूप सैंधव सभ्यता में था, वही कालांतर तक चलता रहा। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी आदि पशुओं पृष्ठ संख्या 441 का पालन सिंधु सभ्यता के बाद ऐतिहासिक काल में ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होता रहा। मृदभांड सिंधु सभ्यता के पटाक्षेप के थोड़ा पहले गुजरात, दक्षिण भारत तथा ऊपरी गंगा घाटी में जो संस्कृतियां विकसित हुई, उनके मृदभांडों एवं अलंकरण अभिप्रायों में सैंधव परंपरा के सातत्य को देखने का प्रयास किया गया है। गुजरात के रंगपुर, लोथल, प्रभास, पाटन, रोजती, सुरकोटदा एवं धोलाबीरा आदि पुरास्थलों के उत्खनन से प्राप्त मृदभांडों के ठीकरों से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में सैंधव सभ्यता विकृत होकर चमकीले लाल रंग के मृदभांडों में परिवर्तित हो गई थी। सैंधव मृदभांडों का प्रचलन लाल रंग के मिट्टी के इन बर्तनों के साथ साथ किंचित काल तक चलता रहा। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के दो वर्गों के पुरावशेषों पर सिंधु सभ्यता का यत्किंचित प्रभाव स्वीकार किया जा सकता है। एक, दंतु कटक तकनीक से निर्मित समानांतर पार्श्व वाले लंबे आकार के चर्ट के बने हुए ब्लेड उपकरणों पर, तथा दो, मृदभांडों पर काले रंग के चित्रण की परंपरा पर। ऊपरी गंगा घाटी में सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में विकसित संस्कृति को प्रायः परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति के प्रमुख पुरास्थलों में पंजाब में कटपलों, नागर, दधेरी, हरियाणा के भगवानपुरा, जम्मू कश्मीर के मांडा, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, बड़ागांव, आमखेड़ी तथा हुलास आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इन पुरास्थलों से प्राप्त मृदभांडों में साधारण तस्तरियों, जामदानियों, चस्को, कुल्हड़, कलसों, मटकों आदि की गणना की जा सकती है। सिंधु सभ्यता के बेलनाकार बहुत छिद्रित मृदभांड, जो सिंधु सभ्यता की खास विशेषता माने जाते हैं, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के पुरावशेषों में नहीं मिलते हैं। तांबे के उपकरण और खंडित मृदमूर्तियां अन्य महत्वपूर्ण पुरावशेष हैं। भगवानपुरा में परवर्ती हड़प्पा संस्कृति एवं चित्रित धूसर पात्र परंपरा के बीच अति व्याप्ति के संकेत मिले हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन उपर्युक्त सभी संस्कृतियों में विशिष्ट सैंधव पात्र प्रकार नहीं मिलते हैं। दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के ठिकरों पर चित्रित अलंकरणों और सैंधव मृदभांडों पर प्राप्त डिजाइनों में तनिक भी सादृश्य नहीं है। ऊपरी गंगा घाटी की परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के पात्र प्रकार चित्रित धूसर पात्र परंपरा के निर्माताओं द्वारा नहीं अपनाए गए हैं। गृह एवं दुर्ग विन्यास। कतिपय विद्वानों का यह मत है कि ऐतिहासिक काल के गृह एवं दुर्ग विन्यास पर भी सिंधु सभ्यता का प्रभाव पड़ा। इलाहाबाद नगर में दक्षिण पश्चिम लगभग 52 किमी की दूरी पर यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित कौशाम्बी नगर के ध्वंसावशेषों के पूर्वी प्रवेश द्वार पर हुए उत्खनन से रक्षा प्राचीर के जो अवशेष प्रकाश में आए हैं, उन पर स्वर्गीय प्रोफेसर जी आर शर्मा के अनुसार सिंधु सभ्यता की सुरक्षा पद्धति का प्रभाव परिलक्षित होता है। कौशाम्बी की पृष्ठ संख्या 441, सुरक्षा प्राचीरें प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व की हैं। अधिकांश विद्वान जी आर शर्मा के मत से सहमत नहीं है। कौशाम्बी की सुरक्षा प्राचीरों के प्रारंभ होने का समय इन विद्वानों के अनुसार 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले किसी भी स्थिति में नहीं रखी जा सकती। रक्षा प्राचीर के निर्माण की तकनीक एवं शैली में भी उल्लेखनीय अंतर है। ऐतिहासिक काल की ईंटों का आकार सिंधु सभ्यता की ईंटों के आकार 40x20x10 सेमी तथा 30x15x7.5 सेमी से भिन्न है। ब्राह्मी लिपि एलेक्जेंडर कनिंघम, एस लैंगडन, जी आर हंटर तथा डीसी सरकार आदि विद्वानों के अनुसार ब्राह्मी लिपि का उद्भव सैंधव लिपि से हुआ है। यह बात उल्लेखनीय है कि सैंधव लिपि चित्राक्षर लिपि है, जबकि ब्राह्मी एक पूर्ण विकसित वर्णमाला है। सिंधु लिपि में ब्राह्मी लिपि तक विकास के विभिन्न चरणों के विषय में स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि सिंधु सभ्यता के प्रौढ़ चरणों के साथ सैंधव लिपि समाप्त हो गई। तत्पश्चात अशोक 272 से 232 ईसा पूर्व के अभिलेखों में लेखन कला के अस्तित्व के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। ऐसी स्थिति में ब्राह्मी लिपि के उद्भव एवं विकास में सैंधव लिपि के योगदान के विषय में निश्चित रूप से ज्ञान की वर्तमान स्थिति में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आहत सिक्के 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में सर्वप्रथम प्रचलित होने वाले चांदी तथा तांबे के बने हुए आहत सिक्कों के अग्रभाग एवं पृष्ठभाग पर अनेक प्रकार के चिन्ह अंकित मिलते हैं। इन सिक्कों पर वास्तविक चक्र, हाथी तथा बैल इत्यादि कुछ चिन्हों का सैंधव सभ्यता में मिलते हैं। इन सिक्कों पर स्वस्तिक, चक्र, हाथी तथा बैल इत्यादि कुछ चिन्हों का जो सैंधव सभ्यता में मिलते हैं अंकन मिलता है। सी एल फॉबरी आदि विद्वान इन चिन्हों पर सैंधव लिपि के चिन्हों का प्रभाव मानते हैं। अहमद हसन दानी नामक विद्वान सैंधव लिपि तथा आहत सिक्कों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 537 चिन्हों में से केवल 15 चिन्ह ही ऐसे हैं जो दोनों में मिलते हैं। सैंधव सभ्यता की मुहरों पर प्राप्त चिन्ह लेखन शैली के अभिन्न अंग हैं, जबकि आहत सिक्कों पर प्राप्त प्रतीक मात्र चिन्ह हैं। सैंधव मुहरों के कुछ चिन्हों को उनके संदर्भ से अलग करके आहत सिक्कों के चिन्हों से उनकी समता दिखलाने मात्र से सैंधव लिपि की निरंतरता ऐतिहासिक काल तक सिद्ध नहीं की जा सकती है। इस प्रसंग में एक अन्य साक्ष्य भी उल्लेखनीय है। पटना से प्राप्त एक ताम्रपट पर भी लगभग 12 ऐसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं जो सैंधव लिपि चिन्हों से मिलते जुलते हैं। आध्यात्मिक तत्व सिंधु सभ्यता का प्राचीन भारतीय धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया जाता है। मातृदेवी की उपासना, पशुपति शिव की परिकल्पना, पृष्ठ संख्या 443, मूर्ति पूजा एवं वृक्ष पूजा, जल की पवित्रता, तप एवं योग की परंपरा आदि पर सैंधव धर्म का प्रभाव पड़ा। मातृदेवी की उपासना हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो आदि से मिट्टी की बनी हुई नारी मूर्तियां मिली हैं। ये विशद के सज्जा से युक्त हैं। इनको विद्वान पूजा के लिए निर्मित मातृदेवी की मूर्तियां मानते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की प्रधानता मिलती है। केवल अदिति, पृथ्वी, वाक आदि कतिपय देवियों का उल्लेख प्राप्त होता है। ऐतिहासिक काल में शाक्त धर्म के अभ्युदय पर सनातन धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य है यह है कि सिंधु सभ्यता के सभी क्षेत्रों में माता देवी की पूजा एक लोकप्रिय धर्म के रूप में संभवतः प्रचलित नहीं थी। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के बाहर स्थित सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से माता देवी की मिट्टी की मूर्तियां अभी तक नहीं मिली हैं। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बड़ावली ही इसका एकमात्र अपवाद है जहाँ से माता देवी की दो मृण मूर्तियां मिली हैं। भारत गणराज्य के सिंधु सभ्यता के अन्य पुरास्थलों से माता देवी की मृण मूर्तियां नहीं मिली हैं। ऐसा संभव है कि राजस्थान गुजरात आदि के क्षेत्रों में माता देवी की उपासना का प्रचलन नहीं रहा हो। कालीबंगा तथा लोथल के उत्खनन से कई अग्निकुंड एवं अग्निवेदिकाएं उपलब्ध हुई हैं। कालीबंगा के दुर्ग क्षेत्र के दक्षिणी आधे भाग में 5 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। इनके अतिरिक्त कालीबंगा के नगर क्षेत्र में अनेक भवनों में अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएं मिली हैं। नगर क्षेत्र में रक्षा प्राचीर के बाहर पूर्व दिशा में एक भवन के ध्वंसावशेष मिले हैं जिसमें केवल अग्निवेदिकाएं थी। ऐसी संभावना हो सकती है कि राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्रों में सिंधु सभ्यता के काल में अग्नि पूजा और यज्ञ आदि का प्रचलन रहा हो। यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से अग्नि पूजा के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। शिव की उपासना। शिव के कई रूपों का अंकन हमें सिंधु सभ्यता की मोहरों एवं मूर्तियों में देखने को मिलता है। जॉन मार्शल नामक विद्वान ने मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर अंकित देवता को ऐतिहासिक काल के पशुपति शिव का प्राक रूप माना है। इस देव के अगल बगल कुल मिलाकर 4 पशुओं का अंकन है जो संभवतः उसके पशुपति रूप के द्योतक हैं। शिव को ऐतिहासिक काल के ग्रंथों में पशुपति, योगी तथा त्रिकालदर्शी कहा गया है। देवता को पद्मासन एवं सांभवी मुद्रा में अंकित किया गया है। हड़प्पा के उपलब्ध नग्न पुरुष पाषाण मूर्ति नित्य मुद्रा में मिली है जिसे शिव की नटराज मुद्रा का अंकन माना जा सकता है। इस प्रकार कालांतर में विकसित रुद्र शिव की धारणा पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव स्वीकार किया जा सकता है। ऋग्वैदिक काल में रुद्र एक गौड़ देवता थे। उत्तर वैदिक काल पृष्ठ संख्या 444 से रुद्र शिव का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ने लगता है। ऐतिहासिक काल में शिव की गणना ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ त्रिदेवों में की जाने लगी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पत्थर तथा मिट्टी के पुरावशेष मिले हैं जिन्हें लिंग एवं योनि कहा गया है। इन पुरावशेषों के आधार पर यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि कालांतर में शिवलिंग के रूप में शिव की उपासना में इनके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेद में लिंग पूजकों शिष्ण देवाह की निंदा की गई है। पर्वती हिंदू धर्म में शिवलिंग की स्थापना लिंग पीठ में की जाने लगी। लिंग पूजा के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कतिपय विद्वान इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद एसडी सांकलिया के अनुसार तथाकथित लिंग गलियों एवं नालियों में पड़े हुए मिले थे। यदि इनका धार्मिक प्रयोजन होता तो इनको कमरों में स्थापित मिलना चाहिए था। जॉर्ज एफ डिल्स नामक अमेरिकन पुराविद ने भी लिंग एवं योनि पूजा संबंधित मान्यता का खंडन किया है। मूर्ति पूजा। ऐतिहासिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन भारत में व्यापक प्रचलन था जिस पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव देखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा संभवतः प्रचलित थी। इसके उदाहरण माता देवी की मृण मूर्तियां, मोहरों पर अंकित देवी देवताओं की आकृतियों तथा पत्थर की प्रतिमाओं पर के रूप में मिलते हैं। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। पशु एवं वृक्ष पूजा। सिंधु सभ्यता में पशु एवं वृक्ष पूजा इत्यादि का प्रचलन था। मोहरों एवं मृण मूर्तियों में वृषभ आकृतियों की प्रमुखता मिलती है जिनका कारण संभवतः धार्मिक रहा होगा। हाथी, सिंह आदि पशुओं को उनकी शक्ति के कारण पूजा जाता रहा होगा। कतिपय संश्लिष्ट एवं काल्पनिक पशु आकृतियों का मोहरों पर अंकन मिलता है। ऐतिहासिक काल में शिव के वाहन के रूप में नंदी और गाय की पूजा इत्यादि की परंपरा पर पशु पूजा का प्रभाव देखा जा सकता है। जॉन मार्शल ने गणेश पूजा पर पशु पूजा का ही प्रभाव माना है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित वराह अवतार तथा मत्स्यावतार इत्यादि पशु पूजा के ही विकसित रूप है। ऐतिहासिक काल में विकसित होने वाली नाग पूजा की परंपरा पर भी सैंधव सभ्यता के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेद में इन सभी का अभाव मिलता है। सिंधु सभ्यता में पीपल के वृक्ष की पूजा प्रचलित थी। ऐतिहासिक काल में पीपल के पेड़ की उपासना स्वतंत्र रूप धारण कर लेती है। आज भी भारत में पीपल, बरगद, केला तथा तुलसी इत्यादि की पूजा की जाती है। इस परंपरा पर सैंधव प्रभाव को स्वीकार किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 445। जल की पवित्रता। जल की पवित्रता एवं स्नान ध्यान की परंपरा भारत में काफी प्राचीन लगती है। मोहनजोदड़ो नगर से विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, जिसे जल की पवित्रता एवं स्नान ध्यान की परंपरा का द्योतक माना गया है। ऐतिहासिक काल में विकसित होने वाली सरित पूजा में सिंधु सभ्यता के प्रभाव को देखा जा सकता है। आज भी भारत में अनेक नदियों का जल पवित्र माना जाता है। तप एवं योग की परंपरा। तप एवं योग की परंपरा, जिसे हम कालांतर में प्राचीन भारत में देखते हैं, उस पर सैंधव सभ्यता का प्रभाव स्वीकार किया जा सकता है। तप तथा योग की परंपरा पर विचार करते हुए विद्वानों ने कहा है कि ऋग्वैदिक आर्य मूलतः प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी थे। ऋग्वेद में योग की मुद्राओं का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, अतः तप एवं योग की परंपरा को आर्यता संस्कृति की देन माना जा सकता है। इस संबंध में सिंधु सभ्यता के पुरावशेष महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में पुरुष का अंकन पद्मासन मुद्रा में है। पद्मासन योग की एक मुद्रा है। योग की एक अन्य मुद्रा का अंकन पत्थर की एक मूर्ति में मिलता है, जिसकी आधी खुली आंखें नाचिका के अग्रभाग पर केंद्रित है। इसको सांभवी मुद्रा से संबंधित किया जा सकता है, जिसका वर्णन परवर्ती भारतीय साहित्य में मिलता है। पूर्ण रूप से विकसित दर्शन के रूप में योग दर्शन का विकास आगे चलकर हुआ। इस प्रकार योग की कुछ मुद्राओं का पूर्व रूप हमें सिंधु सभ्यता में मिलता है। योग दर्शन के क्रियापक्ष की कुछ मुद्राओं पर सैंधव सभ्यता का प्रभाव स्पष्टतः स्वीकार किया जा सकता है। सैंधव धर्म का मूल्यांकन करते हुए जॉन मार्शल नामक विद्वान ने लिखा था कि सिंधु घाटी के लोगों के धर्म में अनेक ऐसी बातें हैं जिनसे मिलती जुलती बातें हमें अन्य देशों में भी मिल सकती हैं, किंतु आधुनिक युग के प्रचलित हिंदू धर्म से उनका भेद करना कठिन प्रतीत होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म और संस्कृति पर सैंधव धर्म का व्यापक एवं गंभीर प्रभाव पड़ा।